अध्याय 13 प्रकृति परिवेश। प्रकृति पुरुष की चिर सहचरी है। मानव जीवन को नाना रूपों में प्रभावित करने वाली, उसे चेतना और प्रेरणा प्रदान करने वाली माया शक्ति के रूप में प्रकृति को भारतीय वाङ्मय में अभूतपूर्व अभ्यर्थना हुई है। प्रकृति और पुरुष के युगबद्ध रूप में दोनों के पारस्परिक संबंधों के संतुलन तथा सहयोग में जीवन की सफलता बताई गई है। मनुष्य अपने व्यक्तिनिष्ठ स्वार्थ के वशीभूत होकर जब जब प्रकृति को पराजित करने के उद्देश्य से परिचालित हुआ है, तब तब उसकी शांति और समृद्धि का ह्रास हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठीक ही लिखा है कि काव्य की चरम लक्ष्य सर्वभूत को आत्मभूत करा के अनुभव कराना है। उसके साधन से अहंकार का त्याग आवश्यक है। जब तक इस अहंकार से पीछा न छूटेगा, तब तक प्रकृति के स्वरूप मनुष्य की अनुभूति के भीतर नहीं आ सकते। भारतीय कवियों ने इस सत्य को सदा स्वीकार किया था। परिणामतः ऋग्वैदिक मंत्रों से लेकर वर्तमान युग के गीति काव्यों में इस प्रकृति की शांति, समृद्धि और शक्ति का मनोरम चित्रण भरा हुआ है। विद्यापति के काव्य में भी यह प्रकृति अत्यंत सजीव रूप में उपस्थित हुई है। प्रकृति या वातावरण के प्रति जागरूकता कलाकार का एक अनिवार्य युग धर्म है। इस जागरूकता के आधार पर ही हम कलाकार के प्रकृति पर्यवेक्षण का मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रकृति के चित्रण में लेखक की रुचि और संस्कार का बहुत बड़ा असर होता है। सच तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति को अपने अपने ढंग से देखता है। चिर नावीन्य का अर्थ ही दृष्टिकोण की भिन्नता और उसका क्षण क्षण परिवर्तन। एक ही कवि किसी वस्तु को एक क्षण में कुछ देखता है और किसी दूसरे क्षण में कुछ। प्रकृति का यह निरीक्षण लेखक के सौंदर्य बोध से निश्चित अनुचालित होता है। मनोवैज्ञानिक सौंदर्य शास्त्रियों ने इसी आधार पर सौंदर्य शास्त्र के दो मुख्य उद्देश्य बताए हैं। पहला, सौंदर्य का उपभोग और उससे आनंद की उपलब्धि। दूसरा, सौंदर्य का निर्माण यानी कला को जन्म देने वाली भावना। इस प्रकार सौंदर्य बोध के वास्तविक विश्लेषण का अर्थ है कलाकार के सौंदर्य ग्राहिका वृत्ति का विश्लेषण। प्रवृत्ति का पता दो प्रकार से चलता है, खास वस्तुओं में लेखक की दिलचस्पी से और प्रकृति के प्रति या सौंदर्य के आधार के प्रति जिसकी जागरूकता से। दिलचस्पी या किसी खास वस्तु के प्रति लेखक को रुझान की जानकारी उसकी रुचि का पता देती है। प्रत्येक मनुष्य उत्तम से उत्तम सौंदर्य को वस्तु से केवल उतना ही आनंद प्राप्त कर सकता है। जितना उसकी योग्यता या पात्रता के द्वारा प्राप्त हो सकता है। कवि या कलाकार की श्रेष्ठता इसी बात पर निर्भर करती है कि वह सौंदर्य के किस रूप की और कितने ऊंचे स्तर के रूप की अभ्यर्थना करता है। यहीं पर कलाकार के लिए कल्पना और यथार्थ का प्रश्न उपस्थित होता है। विश्व में उपलब्ध सौंदर्य हमारी व्यक्तिगत सीमाओं के कारण हमें खंडशः ही प्राप्त होता है, या जो कुछ प्राप्त होता है वह हमारे संपूर्ण उद्देश्य के सामने खंडित ही प्रतीत होता है। ऐसी अवस्था में कवि या लेखक कल्पना के आधार पर इसे पूरा करने का, अपनी रुचि और कलात्मक रुझान के मुताबिक संपूर्णता प्रदान करने का प्रयत्न करता है। कांट ने इसी आधार पर कल्पना को एक व्यापक अर्थ प्रदान करते हुए कहा कि कल्पना एक दूसरी प्रकृति का निर्माण करती है उन्हें तमाम साधनों से जो उसे वास्तविक प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। अपनी रुचि और समझ के मुताबिक कवि भावों के नाना रूपों की सहायता और कल्पना के उन्मुक्त प्रयोग के आधार पर एक ऐसी वर्णपूर्ण वस्तु का निर्माण करता है जिसके समानांतर कोई दूसरी वस्तु प्रकृति में उपलब्ध नहीं हो सकती। सौंदर्य बोध की उपयोगिता के बारे में अध्यात्मवादी आलोचकों ने एक दूसरे ढंग से भी विचार किया है। उनका कहना है कि प्रकृति अराजकता का समूह नहीं है। उसके प्रत्येक स्पंदन में एक निश्चित नियम या ऋतु की प्रेरणा कार्य करती है। कवि या लेखक प्रकृति के सुंदर अंदर निहित इसी सत्य का अन्वेषण करता है। प्रकृति स्वतः एक महत् कला है। साहित्य ससीम और असीम के बीच की कड़ी है। कवि अपनी सीमित शक्ति से प्रकृति के खंडशः प्रस्तुत चित्रों के माध्यम से अखंड सत्ता की अभिव्यक्ति करता है। कवि प्रकृति की सारी संपदा को अपना साधन बनाकर सार्वभौम अदृश्य सत्ता को व्यक्त करता है। विद्यापति ने प्रकृति के नाना कर्णों को, उसके सौंदर्य की विविध आकर्षणों को उसी दृष्टि से देखा था। मध्ययुगीन साधना में भी चित्तमोहन सेन ने लिखा है कि यूनाइटेड कामा चंडीदास दुनिया के ऊपर के पक्षी हैं, जहाँ लौकिक सौंदर्य बिखर जाता है किंतु वहाँ स्वर्ग छूता है। विद्यापति दिन भर धूप से स्नात गुफाओं पुष्पित उद्यानों में घूमते हैं और शाम को उनके लालसा इतनी ऊपर उठ जाती है कि वे प्रथम कवि को लांग जाते हैं। यूनाइटेड कामा विद्यापति कि काव्य में दो प्रकार से उपस्थित होती है प्रकृति। एक तो वह आलंबन या वर्ण विषय के रूप में दिखाई पड़ती है, कहीं वह मात्र उद्दीपन बनकर आती है। हमारे देश में ऋतुओं का विवरण प्रकृति के समष्टिगत विवरण में प्रासंगिक रूप से किया जाता था। वैदिक मंत्रों में ऋतु या प्रकृति का चित्रण आलंबन के रूप में ही होता था। स्वयं वर्ण थी आकर्षण और सौंदर्य की अधिष्ठात्री होने के कारण। यह बात दूसरी है कि सर्वत्र वैदिक ऋषि आह्लाद युक्त भाव से ही उसका चित्रण नहीं कर पाता था। उसे प्रकृति के उस उग्र रूप का अनुभव था और उस प्रचंड सीमा प्रकृति की उग्रता से भयातुर होकर भी वह उसकी स्तुति करता था। वाल्मीकि के काव्य में भी प्रकृति प्रधान रही। कालिदास तो निसर्ग के कवि ही कहे जाते हैं। कालिदास के ऋतुसंहार काव्य को देखने से ऐसा लगता है कि यद्यपि प्रकृति उनके लिए मानवीय रति या श्रृंगार को दीपन का मात्र साधन बनकर ही रह गई है, फिर भी उसमें स्वाभाविकता और यथार्थ का अभाव दिखाई पड़ने लगता है। वस्तुओं के विवरण में रूढ़ियों का प्रभाव गाढ़ा होने लगा था। शुक्ल जी का अनुमान है कि उद्दीपन के रूप में प्रकृति के चित्रण की परिपाटी तभी से आरंभ हुई हो। उन्होंने लिखा है, ऐसा अनुमान होता है कि यूनाइटेड कामा कालिदास के समय से या उसके कुछ पहले से ही दृश्य वर्णन के संबंध में कवियों ने दो मार्ग निकाले। स्थल वर्णन में जो वस्तु वर्णन की सूक्ष्मता कुछ दिनों तक वैसी ही बनी रही, पर ऋतु वर्णन में चित्रण उतना आवश्यक नहीं समझा गया। जितना कुछ इन्हीं गिनी वस्तुओं का कथन मात्र करके भावों के उद्दीपन का वर्णन जान पड़ता है कि ऋतु वर्णन वैसे ही फुटकल पद्यों के रूप में पढ़े जाने लगे जैसे बारहमासा पढ़ा जाता है। यूनाइटेड कामा षड ऋतु और बारहमासा। अभाग्यवश मध्यकालीन काव्य में प्रकृति चित्रण का रूप अत्यंत कृत्रिम और रूढ़िग्रस्त हो गया। षड ऋतु के वर्णन में कवि की दृष्टि प्रकृति के यथार्थ रूप पर आधारित न होकर आचार्य द्वारा निर्मित नियमों और कवि समयों से परिचालित होने लगे। कवियों के लिए बना बनाया मसाला दिया जाने लगा। उनका कार्य केवल घरों दे बना देना रह गया। काव्य मीमांसा में काल विभाग के अंतर्गत इस प्रकार का पूरा विवरण एकत्र मिल जाता है। राजशेखर ने तो यहाँ तक कह दिया कि देश भेद के कारण पदार्थों में कहीं कहीं अंतर आ जाता है, किंतु कवि को कवि परंपरा के अनुसार ही वर्णन करना चाहिए, देश के अनुसार नहीं। देशेषु पदार्थानां व्यत्यासो दृश्यते स्वरूपस्य तन्न तथा मन्दित्याक्त विपद्यमियं प्रमाणं न। अर्थात कवि की अपनी अनुभूतियों और निरीक्षण उपलब्धियों का कोई मूल्य नहीं। विद्यापति के पहले इस काव्य प्रकार में कई रचनाएं लिखी गई हैं, ब्रजभाषा के अवहट्ट या पिंगल शैली में भी और आरंभिक शुद्ध ब्रजभाषा में भी। इसमें संदेश रासक का शरद ऋतु वर्णन, प्राकृत पैंगलम के स्फुट ऋतु वर्णन के पद अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। संदेश रासक और पृथ्वीराज रासों के षड ऋतु वर्ण उद्दीपन के रूप में दिखाई पड़ते हैं। संदेश रासक का ऋतु वर्णन विरहणी नायिका के हृदय के दग्ध उच्छ्वासों से परिपूर्ण है। पथिक उस पोषित पतिका से उसकी दिनचर्या पूछता है। वह जानना चाहता है कि कब से नूतन मेघ रेखा से विनिर्मित चंद्रमा के समान नायिका का निर्मल बदन इस प्रकार विरह धूम से श्यामल हो रहा है। और तब नायिका का एक वर्ष पहले ग्रीष्म ऋतु में विदा होने वाले प्रीतम के वियोग का सविस्तार वर्णन सुना जाती है। संदेश राशक का ऋतु वर्णन कवि प्रथा के अनुसार निश्चित वस्तुओं की सूची उपस्थित करता है, इसमें शक नहीं। किंतु जैसा डॉक्टर हरि प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि जायसी की भांति अदहमाण के सादृश्य मूलक अलंकार और बाह्य वस्तु निरूपक वर्णन बाह्य वस्तु की ओर पाठक का ध्यान न ले जाकर विरह कात विरहणी के मर्मस्थल की पीड़ा को अधिक व्यक्त करते हैं। रासो का ऋतुवर्णन यद्यपि विरह शंकिता नायिकाओं के हृदय की पीड़ा को व्यंजित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है, किंतु इन पदों में संयोग कारण स्मृतियों की विवृत्ति दिखाई पड़ती है। इसलिए इसे हम संयोग कारण उद्दीपन ऋतुवर्णन की प्रथा का ही निदर्शन कहेंगे। संयोगिता से मिलने के लिए उत्सुक पृथ्वीराज जयचंद्र के यज्ञ में उपस्थित होना चाहते हैं। वो तो प्रत्येक रानी के पास विदा लेने के लिए जाते हैं, किंतु रानियों का ऐसी ऋतु में बाहर न जाने का मधुर आग्रह वे टाल नहीं पाते और रुक जाते हैं। रासों के ऋतु वर्णन की विशेषताओं पर डॉक्टर सुधीर प्रसाद द्विवेदी ने विस्तार से विचार किया है। प्राकृत पेंगुलम एक काव्य संग्रह है, इसलिए छंदों के उदाहरण के लिए उसमें पद्य संकलित किए गए हैं। उसमें पूर्णता के साथ ऋतु वर्णन का मिलना कठिन है, किंतु इस काव्य में स्थान स्थान पर प्रकृति का जो चित्रण मिलता है, खास तौर से ऋतुओं का चित्रण, वह निश्चय ही किसी अज्ञात ज्ञात काव्य के ऋतु वर्णन प्रसंग से लिया गया है। उदाहरण के लिए वसंत ऋतु का चित्रण देखिए। फुल्लीय केशु कंपतम तहम पालीय बंजर तेजीय चूआ दक्षिण वाव सीय भई पवहई कंप विहोवणी हिया केय धूम शब्द दिशि पसरई पियर सव भासे साउ बसंत काय सही करी अई कंतड़ थक पासे। प्राकृत पेंगलम पृष्ठ संख्या 212। प्राकृत पेंगलम के एक और पद में ऋतु वर्णन संबंधी बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। इस पद में शिशिर के बीतने और बसंत के आगमन का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। प्राकृत पेंगलम में ऐसे ऋतु वर्णन वाले पदों की विशेषता यह है कि इसमें प्रकृति उद्दीपन के रूप में चित्रित होते हुए भी कालिदास के ऋतु संगार की परंपरा में है, अर्थात केवल उद्दीपन मात्र ही नहीं है, प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण भी अभीष्ट रहा है। नेमिनाथ चतुष्पदिका और नरहरि भट्ट के ऋतु वर्णन बारहमासा पद्धति में लिखे हुए हैं। नेमिनाथ चौपाई में राजमती की विरह का सविस्तार वर्णन मिलता है। नेमिनाथ के वियोग में उनकी परिणीता राजमती आषाढ़ से आरंभ करके ज्येष्ठ तक के 12 महीनों की अपनी विरह पीड़ा तथा नेमि की कठोरता का विवरण अपने सखी को सुनाती है। नेमिनाथ चतुष्पदिका के प्रसंग के पीछे दिए हुए हैं। षड ऋतु और 12 मास संबंधी रचनाएं गुजराती राजस्थानी तथा हिंदी के विभिन्न बोलियों में प्राप्त होती हैं। इन रचनाओं के वस्तु तथा भावधारा का विश्लेषण करने पर मालूम होता है कि इसमें षड ऋतु वर्णन मूलतः संयोग श्रृंगार का काव्य है, जबकि 12 मासा विरह या विप्रलंब का। वैसे संदेश राशक के षड ऋतु वर्णन का वर्णन विरह प्रधान है, जो इस मान्यता के विरुद्ध दिखाई पड़ता है, किंतु अधिकांश रचनाओं से उपर्युक्त मत की पुष्टि हो जाती है। षड ऋतु का चित्रण रासों में संयोग काव्य की प्रथा में ही हुआ है। पद्मावत में षड ऋतु और 12 मासा दोनों ही के प्रसंग आते हैं। षड ऋतु वर्णन खंड में पद्मावती और रतन सेन के संयोग श्रृंगार का चित्रण हुआ है। ठीक उसी के बाद आने वाले नागमती वियोग खंड में नागमती के विरह का वर्णन 12 मासा की पद्धति पर प्रस्तुत किया गया है। इसी को संलक्ष करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि प्राप्त प्रथा के अनुसार पद्मावती के संयोग सुख के संबंध में षड ऋतु और नागमती की विरह वेदना के प्रसंग में 12 मासा का चित्रण किया गया है। नेमिनाथ चतुष्पदिका तथा नरहरि भट्ट के 12 मासे में भी वियोग वेदना की अभिव्यक्ति की गई। विद्यापति ने भी विरह का चित्रण 12 मासे की पद्धति पर किया है। मोर पिया सख गेल दूर देश जीवन दय गेल साल सनेश मास अषाढ़ उनत नव मेघ पिया विश्लेष रहियो निर्थेघ कौन पुरुष सखी कौन सुदेश करब मोय तहां जोगिन वेश। आषाढ़ के नवीन मेघों के उन्नयन आने से प्रिय विश्लेष दुखी की काली छाया निरंतर घनी होती जा रही है और पत्न पल परिवर्तित प्रकृति वेश को सोनी आंखों से देखते देखते अपने ताप से जगत को धूलिसात कर देने वाला ज्येष्ठ आ जाता है। विद्यापति ने अत्यंत कौशल से विरह की इस करुण वेदना को 12 मासा में अंकित किया है। सूरदास ने 12 मासे की शैली में अलग से कोई काव्य नहीं लिखा, किंतु गोपी विरह में इस शैली की छाप स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ब्रजभाषा के परवर्ती लेखकों ने षड ऋतु और 12 मासे की पद्धति में कई काव्य लिखे हैं। सेनापति का ऋतु वर्णन अपनी अत्यंत सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण की कुशलता तथा भाषा के स्वाभाविक प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। संभवतः 1888 में सुंदर कवि ने तथा 1811 में हंसराज ने 12 मासों की रचना की। इन 12 मासों में प्रकृति का चित्रण प्रायः आषाढ़ मास से आरंभ होता है। षड ऋतु में ऋतु का आरंभ ग्रीष्म ऋतु से दिखाया जाता है। ऋतु संहार में इस पद्धति को अपनाया गया है, किंतु इन नियमों के अपवाद भी कम दिखाई नहीं पड़ते। उदाहरण के लिए गुजराती में 18वीं सदी में लिखित इंद्रावतीकृत षड ऋतु वर्णन वर्षा से आरंभ होता है। इसी प्रकार गुजराती के दूसरे कवि श्री दयाराम से संवत 1845 में लिखे गए षड ऋतु विरह वर्णन काव्य में ऋतु का आरंभ वर्षा से किया है। षड ऋतु में जायसी ने ऋतु का आरंभ वसंत से किया है। प्रथम वसंत नवल ऋतु आई, सुऋतु चैत वैशाख सुहाई, चंदन चीर पहिर धरी अंगा, सिंदूर दीन विहसि भरगम मंगा। संदेश राशक में षड ऋतु वर्णन का आरंभ ग्रीष्म ऋतु से ही होता है। 12 मासे प्रसंग में आषाढ़ से आरंभ की पद्धति प्राय सर्वमान दिखाई पड़ती है। कवि प्रिया में केशव ने दशमे प्रभाव में 12 मास का वर्णन चैत से किया है, जो फागुन में समाप्त होता है। सातवें प्रभाव में षड ऋतु का वर्णन वसंत ऋतु से हुआ है। अलंकार शिखर में 16वें मरीच में षड ऋतु वर्णन सुरभि ऋतु यानी वसंत से ही शुरू होता है। वैसे भी इस देश में नववर्ष का आरंभ भिन्न भिन्न महीनों में माना जाता है। राजशिखर के मतानुसार ज्योतिष शास्त्र वेद सा संवत्सर का आरंभ चैत्र मास से यानी वसंत ऋतु से तथा लौकिक व्यवहार वाले श्रावण से मानते हैं। सच चैत्रादिर्षि वैज्ञ श्रावणाधिरति लोकयात्रा विदः काव्य मीमांसा 18वां अध्याय। इसी आधार पर राजशेखर ने ऋतुओं का जो क्रम बताया है वह वर्षा से आरंभ होता है। वर्षा, शरत, हेमंत, वसंत, ग्रीष्म। यहाँ पर वर्षा आरंभ की पद्धति वही है जिसे गुजराती कवियों ने स्वीकार किया है। लगता है राजशेखर के काल में भी इस क्रम में व्यत्यय होता है था, इसीलिए उन्होंने व्यवस्था दी कि ऋतुक्रम में व्यत्यय करने से कोई दोष नहीं पैदा होता। हाँ, इतना अवश्य है कि वह प्रसंगानुकूल हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम षड ऋतु और 12 मासा के संबंध में निम्नलिखित विशेषताएं निर्धारित कर सकते हैं। पहला, दोनों ही उद्दीपन के निमित्त व्यवहित काव्य प्रकार हैं, किंतु सामान्यतः षड ऋतु का वर्णन संयोग श्रृंगार में और 12 मासे का विरह में होता है। इन नियमों का पालन बड़े शिथिल ढंग से होता है, अतः अपवाद भी मिलते हैं। दूसरा, षड ऋतु वर्णन ग्रीष्म ऋतु से प्रारंभ होता है। 12 मासे की पद्धति के प्रभाव के कारण कई स्थानों पर वर्षा से भी आरंभ किया गया है। 12 मासा प्राय आषाढ़ महीने से आरंभ होता है। तीसरा, इन काव्यों की पद्धति बहुत रूढ़ हो गई है। कवि प्रथा का पालन बहुत कड़ाई से होता है, इसलिए मौलिक उद्भावना की कमी दिखाई पड़ती है। जैसा कि पहले ही निवेदन किया गया है, विद्यापति के प्रकृति वर्णन दो श्रेणियों में रखे जा सकते हैं। वर्ण वस्तु के रूप में, दूसरा उद्दीपन के रूप में। प्रथम प्रकार के वर्णन में ऋतुओं का वर्णन या प्रकृति के किसी खास रूप का वर्णन कवि ने उसकी स्वतंत्र सत्ता का स्वीकार करते हुए प्रस्तुत किया है, किंतु उसे पूर्णतया प्रकृति का आलंबन के रूप में चित्रण नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए वसंत का कई पदों में स्वतंत्र वर्णन हुआ है। कवि ने वसंत को कहीं बालक रूप में, कहीं तरुण रूप में और कई स्थानों पर राजा के रूप में चित्रित किया है। ऐसे प्रसंगों में उन्होंने प्रकृति को मनुष्य की भावनाओं की दासी तो नहीं बनाया, किंतु इन वर्णनों में प्रायः मानवीय भावों का आरोप किया गया है और इनकी सुंदरता या उन्मादकारिता का मुख्य कारण मानव हृदय को आह्लादित करने की शक्ति को ही बताया है। इसलिए वसंत के जितने विश्लेषण हैं वे सभी मनुष्य के मन को प्रसन्न करने वाले गुणों के द्योतक हैं, जैसे आयल उन्मद समय वसंत या आयल वसंत सकल रणरंजक या आयल वसंत सकल रसमंडल आदि। हाँ, वसंत वर्णन में अभिव्यक्त उल्लास की शक्ति को देखते हुए इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि कवि के मन में प्रकृति के प्रति स्वाभाविक आकर्षण और अकृत्रिम रुझान दिखाई पड़ती है। वसंत राजा की भांति वनस्थली में प्रवेश करता है। राजा के सम्मान में नवोत्पन्न पत्तों ने सिंहासन स्थापित किया, कांचन कुसुमों ने माथे पर छत्र रखा, आम्र मुकुल शिरोभूषण हुआ, पक्षी कलकल ध्वनि ने आशीर्वाद का उच्चारण करते रहे हैं, कुसुम पराग श्वेत चढ़ावे की तरह छा गया। तरु ने कुंदलता की पताकाएं फहरा दी। नृपयासव नव पीठल पात कांचन कुसुम छत्र धरुमात मौलि रसाल मुकुल भिलताय सुमुख की कोकिल पंचम गाय सिख कुल नाचत अली कुल जंत्र द्विज कुल आन पाढ़ आ सिख मंत्र चंद्रातप उड़े कुसुम पराग मलय पवन स भेल अनुराग कुंद वल्ली तरुधय निशान पाटल तूड़ अशोक दलवान। कवि वसंत के स्वागत में मत मयूर की तरह नाच उठता है। इन कवियों में प्राचीन कवियों का प्रभाव स्पष्ट है। उदाहरण के लिए जयदेव ने गीत गोविंद में वसंत का वर्णन करते हुए उन्मद मदन महीपति के बारे में प्रायः उपयुक्त बातें ही लिखी हैं। मृग मदर सार भर भस वंशवद नवदल माल तमाले युवजन हृदय विदारद वन सिख नख रुचि किंशुक जाले मदन महीपति कनक दंड रुचि केसर कुसुम विकासे मिलित शिली मुख पाटल पटल कृत स्मर तृण विशाले। गीत गोविंद काव्यम पहला सर। वसंत के वर्णन में विद्यापति ने एक आत्मीयता और निकटता का भाव संयोजित कर दिया है। वसंत उनके लिए जैसे विदेश से लौटा हुआ कोई परिजन है, स्वजन जिसके स्वागत में लाज संकोच की आवश्यकता नहीं। वे हृदय के संपूर्ण उच्छ्वासों के साथ ऋतुराज के स्वागत में खड़े हैं। नाचहुँ रे तरुणि तजहुँ लाज आयल वसंत ऋतु वनिक राज। एक दूसरे स्थान पर उनकी नायिका अपने सखियों से वसंत राज का चुमावन करने को कहती है। उसने वसंत को बैठने के लिए नवीन किसलयों का आसन दिया, धवल कमल मांगलिक कलश के रूप में स्थापित किया, मकरंद की मंदाकिनी का पवित्र जल है, अरुण अशोक के दीप जलाए, आज पूर्ण दिवस है वसंत राज का वरण करो, पूर्ण चंद्र मांगलिक दधि है, भ्रमरी ने दौड़कर सबको बुलाया, किंशुक के फन ने सिंदूर प्रदान किया, केतकी की धूल वस्त्र की तरह छा गई। अभिनव पल्लव बैसक देल धावल कमल फूल पुरहल भेल करु मकरंद मंदाकिनी पान अरु अशोक दीप दहु आन माई हे आज दिवस पुनमत करिय चुपावन चुमावन राय वसंत सपन सुधा निधि दधि भय गेल भमि भमि भमरी हकाई देल टेस कुसुम सिंदूर समभास कीरिक धूलि विथरह पटवास भने विद्यापति कवि कंठ तार रसभुज शिव सिंह शिव अवतार। इस प्रकार के सांग रूपक उपयुक्त वर्णनों में कवि ने प्रकृति के विभिन्न पर्णों का बहुत सूक्ष्म और बिंबग्राह्य वर्णन प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसे प्रसंगों की विशेषज्ञता इतनी ही है कि इनके द्वारा कवि के मन का एक अद्भुत उल्लास और प्रकृति को मानवीय रूपों में देखने की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति का पता चलता है। बसंत को बालक तरुण दूल्हा राजा आदि रूपों में रखकर उसका जो वर्णन किया गया है उसमें हमारे जीवन के लोकाचारों का पूरा निर्वाह किया गया है। बसंत के साथ कुछ एक और ऋतुओं का भी सर्वत्र स्वतंत्र वर्णन हुआ है। पावस वर्णन में कवि ने उसके भयंकरता का अच्छा चित्रण किया है। आयल पाउस निविड़ अंधकार सघन नीर बरसे जलधार घन हन देखियत विघटि रंग पथ चलैत पथि कहु मन भंग नदिया जोरा भव अथा भीम भुजंगम पद चलला। अभिसार के प्रसंगों में कवि ने रास्ते की बाधा आदि के वर्णन के उद्देश्य से काली पावस रातों का प्राय भयंकर वर्णन किया है, लेकिन उद्देश्य जो भी रहा हो ऐसे वर्णनों में कवि की सूक्ष्मदर्शिता का पता भी चलता है। जलद सरीस जलधार काजरे रांगल रति भमये भुजंगम भीम पंके पुरल चौसीम दिगमग देखिए घोर पैर दिए विजुरि अजोर। प्रकृति का स्वतंत्र वर्णन विद्यापति के काव्य में गौड़ है। मुख्य है उसका उद्दीपन के रूप में चित्रण। उद्दीपन के रूप में प्रकृति का चित्रण अत्यंत रूढ़ कवि व्यापार है, इसमें संदेह नहीं, किंतु इस परिपाटी को मानने वाले कवि के लिए इसमें नूतन आकर्षण पैदा करना बहुत कठिन होता है। विद्यापति ने इस प्रकार के वर्णनों में अपनी निरंतर जागरूकता सूक्ष्मदर्शिता और संवेदनशीलता का बहुत अच्छा परिचय दिया है। वीरानी के लिए प्रिय वीरानी की बरसाती रातें कितनी दारुण हैं। बादलों की काली रातों में वीरानी के दुख की सीमाएँ टूट जाती। वह कहती है बादलों से भरा हुआ भादो और प्रिय से रिक्त तेरा घर। कि इस असीम दुख का कहीं अंत नहीं। कभी ने वर्षा के साथ घटित घटनाओं, बादलों की गर्जन, झंझा झंझापात, मत्त मयूर की आवाज से उत्पन्न ध्वनियों को शब्दों में बांधकर विराने हृदय की विभिन्न परिस्थितियों से उनकी तुलना करके संपूर्ण प्रकृति को व्यक्ति के दुख में लय कर दिया। सखी हे हमर दुखक नहीं ओर, ई भर वादर माह भादर सुन मंदिर मोर, जपिवन गर्जन्ति संतत भुवन भरि बसंतिया बरसंतिया, कंत पाहुन काम दारुण सघन कर सर हंतिया, पुलिस कत सत पात मुदित मयूर नाचत मातिया, मत्त दादुर डाक डाहुक फाटि जायत छातिया, तिमिर दिग भरि घोर यामिनि अथिर विजुरिक पातिया, विद्यापति कह कैसे गमाओब हरि बिना दिन रातिया। उद्दीपन के रूप में प्रकृति के उपकरणों के प्रयोग से मानवीय दुख की इतनी तीव्र व्यंजना शायद ही कोई कवि कर सका हो। इस पद में कवि ने जैसे अपने हृदय की सारी घनीभूत पीड़ा को बिखेर कर रख दिया है। यह पद किसी राजा को समर्पित नहीं है, कवि ही इस दुख का एकमात्र साक्षी है। इस कविता में ध्वन्यात्मक वस्तु व्यापार और उनका मानवीय हृदय की अवस्थाओं से समानांतर निर्वाह अद्भुत है। बादलों से गगन भरा है और मेरा घर सूना है, वर्षा का उद्दाम रूप साक्षात आंखों के सामने खड़ा है, चमक छाया अंधकार का नर्तन, मयूरों और दादरों की आवाज़, आंखों के पथ को घोर कालिमा से भर देने वाली रात, विरहणी अपने पति की आने की बाट देखकर मन को झुठला भी तो नहीं सकती, और अस्थिर बिजली का प्रलय नर्तन, यह सब कुछ विद्यापति के हृदय के आंसुओं में स्नात होकर यथार्थ की अनुपम आभा धारण किए हुए है। विरह कवि के लिए कवि ने बारहमासा की पद्धति का भी प्रयोग किया है। विद्यापति के बारहमासा का आरंभ आषाढ़ से शुरू होता है, आकाश में नवीन मेघ जलभार से झुके आ रहे हैं। विरहणी का प्रिय इस दारुण ऋतु में न जाने कहाँ है, कुछ पता होता तो शायद वह योगिनी बनकर उसे ढूंढने को निकल पड़ती। मास आषाढ़ उन्नत नव मेघ पिया विशरेश रहयो निर्थेघ। श्रावण में जब बादलों से भयंकर जलवृष्टि शुरू हो जाती है, अंधकार के कारण पथ तक नहीं सूझता, चारों तरफ बिजली की रेखाएं कौंधती रहती हैं, उस समय उसे अपने जीने में संदेह होने लगता है। सावन मास बरस घनवारी, पंत व सूज निश अधियारी, चौदिस देखिए विजुर रेह, हे सखी कामे जीवन संदेह। भादों की काली रातें चारों तरफ मयूरों और दादरों के रौ से भर जाती हैं। सौभाग्यशाली युवतियाँ चौंक चौंक कर अपने प्रीतम की गोद में छिप जाती हैं। अश्विन में चित्त व्यर्थ की आशा धारण करता है कि प्रिय आएंगे, किंतु निष्करूत नाथ सुधि तक नहीं लेते। सरोवर में चक्रवाक मिथुन क्रीड़ा करते हैं, किंतु मेरे लिए यह मास ही शत्रु हो गया है। कार्तिक मास आया किंतु देशांतर से कंत नहीं आया। सबके लिए नवीन चंद्र की ये रातें सुखपूर्ण हैं, किंतु हमें तो प्रिय ने दुख की पीड़ा ही सौंपी है। अगहन मास तो निश्चय ही जीव का अंत कर देगा। मुझे अकेली रमणी को या विरहाग्नि प्रिय के ना आते न आते अवश्य जलाकर छार कर देगी। पूस खीन दिन दिघरी रात ही, पिया परदेश मलिन भेलकाती, हिरव चौदिश झंखवरो नाह विछोह कशहु जन होय, माघ मास घन पड़े तुसार, झिलमिल कंचुआ उन्नत थनहार, पुनमति सुतलि प्रियतम कोर, विषदस दैव बाम भेल मोर। फागुन मास में धनी का जीव उचाट हो गया, वह रो रोकर पति की राह देखती रही। मत्त कोकिल ने पंचम स्वर में गाना आरंभ कर दिया। चैत में प्रिय का प्रवास चौगुना अखरने लगा। चातुर माली फूलों का विकास समझता है, नागर्जन होकर भी मेरे प्रभु एहसान ही रहे। वैसाखे तवि खर मरण समान, कामिनी कंत हरय पंचमान, न जुड़ी छाहरि न सरिस वारि, हम जे अभागे नि पाप नि नारी, जेठ मास उजर नवरंग, कंत चहे खलु कामिनी संग, रूप नारायण पुरभुवास, भने विद्यापति बारह मास। विद्यापति के काव्य में प्रकृति का वर्णन उन्हीं दो रूपों में दिखाई पड़ता है। कवि ने विरह की अवस्थाओं में जाने प्रकृति को कितने रूपों में देखा है। सुख के दिनों में जो प्रकृति विद्यापति को चांदनी के माया जाल में बांधे रही, मोहरों के गुंजार और फूलों के महक ने मन को उद्रेक और लालसाओं से भर दिया, उसी प्रकृति को उन्होंने विरह के दिनों में जाने कितने रूपों में रुलाया। उस पर व्यंग किया, किंतु उनके मन में इस प्रकृति के प्रति अगाध प्रेम सदैव वर्तमान था।